पाश की काव्य यात्रा। पाश की पहली कविता 1967 में छपी, जबकि पहली कविता उसने केवल 15 वर्ष की आयु में लिखी थी। कवि के रूप में पाश को प्रसिद्धि 1969 से मिलनी शुरू हो गई थी, और 1970 में जब पाश जेल में थे, उनका सर्वप्रथम कविता संग्रह लौह कथा, जिसमें उनकी 36 कविताएं संकलित थी, छपकर आ गया था और इसने एक सनसनी से फैला दी थी। केवल 20 वर्ष की आयु में पाश पंजाबी के एक प्रतिष्ठित कवि बन गए थे। 1971 में पाश जेल से बाहर आ गए थे। 1974 में उनका दूसरा कविता संग्रह उड्डदे बाजा मगर छपकर आया, जिसमें उनकी 38 कविताएं संकलित थी। इस संग्रह को कई विश्वविद्यालयों ने अपने MIA स्तर के पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्यपुस्तक के रूप में चुना, जहां तक कि संघ लोक सेवा आयोग ने भी अपनी परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में यह संग्रह लगाया। पाश का तीसरा कविता संग्रह साढ़े समयाविच 1978 में प्रकाशित हुआ। इस संग्रह में उनकी अपेक्षाकृत लंबी कविताएं संकलित हैं और इनकी संख्या 28 है। इस संग्रह के बाद पाश की शहादत तक उनका कोई अन्य संग्रह प्रकाशित नहीं हुआ। इस बीच पाश ने कविताएं लिखी भी अपेक्षाकृत कम। 24 अप्रैल 1988 को उनकी स्मृति में हुए एक समारोह में उनका एक और कविता संग्रह लड़ांगे साथी रिलीज किया गया। इस संग्रह में अधिकांश कविताएं उनके पहले तीन संग्रह से संकलित की गई हैं, लेकिन 23 नई कविताएं भी संकलन में हैं, जो पहले के तीन संग्रहों में नहीं हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 4 कविता संग्रहों में पाश की 125 कविताएं संकलित हैं। अभी ऐसी भी कविताएं हैं जो पाश ने लिखी लेकिन प्रकाशित नहीं करवाई, जिन्हें वे अपने उन दोस्तों के यहाँ छोड़कर चले जाते रहे जिनके पास वे कभी कभार रुकते थे। कविता के अतिरिक्त पाश ने अपनी डायरी में साहित्य व राजनीति संबंधी चिंतन किया। सियाड़, हाक, हेमज्योति व NT-47 का संपादन करते हुए संपादकीय टिप्पणियों व साहित्यिक राजनीतिक लेख लिखे हैं। आतंकवादियों द्वारा उनकी हत्या करने का मुख्य कारण उनका हाक एवं NT-47 शीर्षक हस्तलिखित पत्रिकाओं में खालिस्तानी विचारधारा का सशक्त विरोध ही है। उनके लेखन के अतिरिक्त पाश जनतांत्रिक मूल्यों के संघर्ष के लिए सक्रिय कार्यकर्ता भी थे, इस लिहाज से वे रॉल्फ फॉक्स, क्वाडवेल आदि की परंपरा में आते हैं। उन्होंने लेखन के साथ साथ जन संघर्षों में सक्रिय भागीदारी भी की, लेकिन कुल मिलाकर पाश का कवि रूप ही उनका सबसे प्रमुख रूप बनकर उभरता है। यद्यपि उनका यह कवि रूप भी उनके संपूर्ण जीवन, व्यक्तित्व और संघर्षों का ही आलोकमय रूप है, जिसे उनके जीवन व उनकी गतिविधियों से अलग कर नहीं देखा जा सकता। और जब हम पाश के कवि रूप को देखते हैं, तो पंजाबी साहित्य संस्कृति के संदर्भ में उनकी तुलना पंजाबी की एक अन्य अत्यंत लोकप्रिय कवि शिव बटावली से करने की इच्छा होती है। लेकिन इन दोनों कवियों में इस बात के सिवा कुछ भी समान नहीं कि दोनों ही कवि 37 वर्ष की अल्पायु में चल बसे। दोनों का ही पंजाबी साहित्य मंच पर सनसनीखेज तरीके से प्रवेश हुआ और दोनों ही बहुत लोकप्रिय रहे। वास्तव में जिन दिनों शिव बटावली लोकप्रियता के शिखर पर थे, उन्हीं दिनों पंजाबी काव्य मंच पर पाश के प्रवेश ने शिव बटावली को उनके शिखर से नीचे खींच लिया। शिव बटावली खुद गाते थे और उनके गीत आज भी बहुत लोकप्रिय हैं। जगजीत, चित्रा सिंह आदि प्रतिष्ठित गायकों ने उनके गीत रिकॉर्ड करवाए, लेकिन शिव बटालवी मौत की शान के शायर थे और पाश उसके मुकाबले जिंदगी के शान के शायर बनकर आए। हमें तो जोबन रुत में मरना शिव के साहित्य व जीवन का मुख्य लक्ष्य था। उन्होंने शराब में डूबकर 37 वर्षीय अल्पायु में मौत की गोद में जाकर यह लक्ष्य पूरा कर लिया, लेकिन उसी समय पाश जिंदगी की शान और संघर्ष की कविताएँ लेकर साहित्यिक मंच पर आए और उन्होंने अपनी कविता से पंजाबी पाठकों की मनोवृत्ति को शिव बटालवी की मौत की संवेदना से आज़ाद कर एक खूबसूरत जिंदगी हासिल करने की के संघर्ष की ओर मोड़ दिया। इस नाते पंजाबी साहित्य में पाश का एक ऐतिहासिक महत्व है। पाश की अब तक उपलब्ध 125 कविताओं में पाश का जो कवि बिंब उभर कर सामने आता है, उसमें विषयगत वैविध्य और रूप के स्तर पर प्रयोगधर्मिता तो मिलती ही है, अपने किस्म की एक ताजगी और मौलिकता भी मिलती है। इसकी वजह से वे 1970 के बाद की पंजाबी कविता के एक सशक्त प्रतिनिधि एवं प्रतीक बनकर उभरे। अमरजीत चंदन ने सही कहा है कि पाश जैसे मौलिक कवि हैं, उनकी नकल नहीं की जा सकती। यद्यपि अनेक परवर्ती कवियों ने पाश के मुहावरे की नकल करने की कोशिश की है, विषयगत वैविध्य होते हुए भी एक केंद्रीय धारा पाश की कविता में लगातार बहती है, और यह केंद्रीय धारा है मनुष्य की, उसके सम्मान की, उसकी शान की गौरव गाथा। उनकी कविता में मौत के अमानवीय जीवन परिस्थितियों के मनुष्य के दमन व उत्पीड़न के प्रति एक चुनौती है, एक विद्रोह है और अदम्य आत्मविश्वास के अंतिम जीत मनुष्य की शान के साथ जीने की ख्वाहिश व उनकी कोशिशों की ही होगी। मनुष्य की शान का यह अद्भुत गान ही पाश को नाजिम हिकमत और पाब्लो नेरुदा की परंपरा का क्रांतिकारी कवि बनाता है। लेकिन पाश सही अर्थों में एक क्रांतिकारी कवि थे, अन्य अनेक समकालीनों की तरह क्रांतिकारी लफाज नहीं। और यदि पाश की काव्य यात्रा का क्रमिक विकास देखा जाए तो उनके चिंतन व काव्य में हुए निरंतर विकास व परिपक्वता को स्पष्टता से रेखांकित किया जा सकता है। पाश ने 1967 में जब कविता लिखना शुरू किया तो देश में नक्सलवादी आंदोलन की व्यापक गूंज थी। पाश इस आंदोलन से गहरे व गंभीर रूप से प्रभावित हुए, लेकिन उन्होंने इस आंदोलन की विचारधारा मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओत्सेतुंग विचारधारा को अच्छी तरह पचाया और इस आंदोलन के उस हिस्से से जुड़े जो जन आंदोलन चलाने में विश्वास रखता था, न कि व्यक्तिगत हत्याओं या आतंक की राजनीति में। जन आंदोलन में गहरा विश्वास रखने से ही पाश की कविता में सामान्य जन की क्रांतिकारी संभावनाओं के बिंब पूरी शिद्दत से उभर कर आते हैं। पाश की कविता के सामान्य जन प्राय गाँव के हैं, किसान, खेत मजदूर, बकरियां चराने वाले, सिपाही इत्यादि। इन लोगों की चेतना अभी भले ही क्रांतिकारी न बन पाई हो, लेकिन क्रांति की संभावनाएं इन्हीं लोगों में हैं। इसे पाश अच्छी तरह पहचानते व समझते थे, जिसे उन्होंने अपनी कविता में बिल्कुल नए व ताजे बिंबों में ढालकर प्रस्तुत किया। रूप के स्तर पर पाश की कविता की सबसे बड़ी विशेषता उनकी बिंबावली है। न सिर्फ पंजाबी कविता बल्कि पूरी भारतीय कविता में यह एक नई बिंब की किस्म की बिंबावली थी। यही वजह थी कि जब भी पाश की कोई कविता अनूदित होकर दूसरी भाषाओं तक पहुंचती, उसे तुरंत स्वीकृति व लोकप्रियता मिलती। पाश के काव्य बिंब पंजाब के ठेठ ग्रामीण जीवन से लिए गए और उनकी कुछ बिंबों में चौंकाने वाली जैसी प्रवृत्ति भी मिलती है, जैसे युद्ध और शांति कविता में शांति के लिए गांधी के जंगे की उपमा। पाश के सर्वप्रथम काव्य संग्रह लव कथा की पहली कविता है भारत। इस कविता में कवि देश व देश प्रेम की अपनी परिभाषा स्पष्ट करता है। पाश के लिए देश भौगोलिक सीमाएं नहीं, बल्कि उनके लिए देश का मतलब है देश की मेहनत कश जनता, कवि घोषणा करता है। इस शब्द के अर्थ खेतों के उन बेटों में है जो आज भी वृक्षों की परछाइयों से वक्त मापते हैं। भारत के अर्थ किसी दुष्यंत से संबंधित नहीं, वरन खेतों में दायर है जहाँ अन्न उगता है, जहाँ सेंध लगती है। भारत को दुष्यंत पुत्र भरत से अलग कर देश की अवधारणा भी वे वर्ग स्तर पर करते हैं, यानी यह देश किसी सामंत पुत्र की विरासत नहीं बल्कि यहाँ की मेहनत कश जनता की विरासत है। पाश अपनी पहली ही कविता में यह घोषित करते हैं। देश की धारणा के साथ साथ पाश व्यवस्था को भी अपनी काव्यमय व्यंग्यात्मक चोट का लक्ष्य बनाते हैं। इसी संग्रह की एक अन्य कविता अब मेरा हक बनता है में वे देश की कथित लोकतांत्रिक व्यवस्था पर कड़ी चोट करते हैं, लेकिन देशभक्ति की सकारात्मक अवधारणा भी पाश इसी संग्रह की अन्य कविता देशभक्त में सामने रखते हैं, जिसे उन्होंने चंदन को समर्पित किया है। इस कविता में वे साम्राज्यवाद के खिलाफ राष्ट्रीय संघर्षों की गौरव गाथा कहते हैं और चेगुवेरा, अफ्रीका व क्यूबा आदि के साथ साथ बंगाल या भारत के अन्य हिस्सों के जन संघर्षों की चर्चा करते हैं। साम्राज्यवाद का सक्रिय विरोध 20वीं सदी के विश्व में देश प्रेम का अभिन्न अंग रहा है, जिसे पाश अपने इस कविता में स्थापित करते हैं। देश प्रेम किस प्रकार एक संकीर्ण भावना न होकर अंतर्राष्ट्रीयता से ओतप्रोत भावना है, यह केवल क्रांतिकारी ही जानते हैं और यही क्रांतिकारी भावना पाश से श्रीलंका के क्रांतिकारियों का अभिनंदन करवाती है और यही पाकिस्तानी पंजाबी कवि अहमद सलीम से उनके अपने संघर्षों में एकजुटता जाहिर करवाती है। यह दोनों कविताएं उनके दूसरे कविता संग्रह उड्ड दे माजा मगर में संकलित हैं। देश की भावना से जुड़ी कविताएं पाश ने अपनी पूरी काव्य यात्रा के दौरान लिखी। साढ़े समयविच संग्रह में इमरजेंसी लगने के बाद देश की स्थिति का दुखात्मक आकलन है। लड़ांगे साथी संग्रह में संकलित व 1985 में दिल्ली के नवंबर दंगों के बाद लिखी कविता बेदखली के लिए बिना पत्र में देश के प्रति एक बार तीव्रतम भावाभिव्यक्ति हुई है। भारत कविता में यदि देश के सामान्य पुत्र से अलगाया गया है तो बेदखली में 1947 के बाद के भारत को एक ही परिवार की संपत्ति होने से अलगाने की तीव्र अनुभूति है। कवि पूरी कविता से कहता है, इसका जो भी नाम है गुंडों की सल्तनत का, मैं इसका नागरिक होने पर थूकता हूँ। मैं उस पायलट की चालाक आँखों में चुभता भारत हूँ। हाँ, मैं भारत हूँ चुभता हुआ, जिसकी आँखों में अगर उसका अपना कोई खानदानी भारत है तो मेरा नाम उसमें से अभी खारिज कर दो। पाश ने अपने पहले कविता संग्रह का नाम रखा लौह कथा। इस शीर्षक को सार्थक करने वाली उनकी कविता है लोहा। इस कविता में लोहे के बिंब से उन्होंने समाज के वर्ग विभेद और वर्ग संघर्ष की स्थिति को उघाड़ा है। एक और वे हैं जो लोहे की बात करते हैं, जिनके पास लोहे की कुर्सियां, बैंकों में लोहे के सेफ हैं, दूसरी ओर लोहे को धौंकनी से ढालकर यह सारी चीज़ें बनाने वाले मेहनतकश हैं, जो अब लोहे की शक्ति से जागृत होकर लोहे की पिस्तौलों, बंदूकों और बमों की शक्ल दे रहे हैं। लेकिन पाश की अधिकांश कविताएं सच्चाई और बगावत का ऐलान करती हैं और शोषक वर्गों को एक चुनौती देती हैं, उनकी पराजय निश्चित है। हर तरह के अत्याचार न उनकी पराजय को रोक सकते हैं और न क्रांति की संभावना मिटा सकते हैं। सच कविता में वे घोषणा करते हैं कि शोषक वर्ग इस सच को स्वीकार करे या न करे, लेकिन अब संघर्ष का सच युग सत्य बन रहा है। समय कोई कुत्ता नहीं, कविता में पाश कहते हैं कि वे जेल में बंद होकर भी आज़ाद हैं, जबकि यह पहरेदार सीखचों के बाहर होकर भी कैद हैं। आप हैरान न हो, कविता में शोषक वर्ग को सीधे संबोधित करते हुए पाश कहते हैं कि वे तो सरफरोश हैं और उनसे हिसाब चुकाता करेंगे। इस कविता में पाश ने उन यंत्रणाओं का काव्यात्मक बिंब प्रस्तुत किया है जो उन्होंने पुलिस के हाथों 1969 में छेड़ी। प्रतिज्ञा कविता में शोषक वर्गों को समाप्त करने की दृढ़ प्रतिज्ञा व्यक्त हुई है। अपने पहले संग्रह से पाश अत्यंत संवेदनशील से मेहनतकशों के सौंदर्यबोध की अवधारणा की बात करते हैं। मेरी माँ की आँखें, कविता में पाश अपनी आँखों की सुंदरता के जिक्र के माध्यम से उस औरत की आँखों में दोष की चर्चा करते हैं, जिसे गरीबी के मार में अपना ही बेटा बदसूरत जान पड़ता है। गले सड़े फूलों के नाम कविता में वे ग्राम संवेदना और नगर संवेदना में फर्क को रेखांकित करते हुए अपनी ग्राम संवेदना के गौरव को स्थापित करते हैं। जेल की खूबसूरत नक्शे कदम कविता में कवि जेल की हदों के भीतर से पहाड़ों और खेतों की सुंदरता का बयान करता है। लौह कथा की एक अन्य व्यंग्यात्मक कविता संस्कृति की खोज है, जिसमें एक अंग्रेज महिला मरियम किसलर PhD की चर्चा है, जो भारतीय संस्कृति पर खोज कर रही है। इसके माध्यम से विदेशियों द्वारा भारत की जा रही भारत की सांस्कृतिक खोज पर व्यंग किया गया है। इस संग्रह की कातिल, खुला खत, कागजी शेरों के नाम आदि कविताएं मध्य वर्ग व बुद्धिजीवियों के नाम संबोधित हैं। उनके खोखलेपन को उद्घाटित करते हुए उनसे संघर्ष में कूद कर अपना व्यक्तित्व हासिल करने की अपेक्षा इन कविताओं में व्यक्त हुई है। 1974 में प्रकाशित पाश का दूसरा कविता संग्रह उड़दे महाजामगर उनकी कविता के कलात्मक विकास की गवाही देता है। संग्रह की पहली कविता शीर्षक कविता है और अपनी परिपक्वता व ताजी से फौरन ध्यान आकर्षित करती है। यह कविता एक स्तर पर यदि व्यंग्यात्मक स्वर लिए हुए है तो दूसरे स्तर पर जीवन के कटु यथार्थ का अंकन करती हुई संघर्ष में कूदने की प्रेरणा देने वाली है। कविता के पहले हिस्से में लाल पगड़ी वाले आलोचकों की चर्चा के माध्यम से सरकार द्वारा कवि लेखकों के लिए जाने वाले सलूक का व्यंग्यात्मक चित्र है, तो पर्वती भाग में बहनों के ब्याह के न उतरने वाले कर्जों, किसानों के शोषण, गाँव की सुंदर लड़कियों के उजड़ते जीवन के कटु चित्र हैं। लेकिन ये कटु चित्र सिर्फ निराशा में डुबोने के लिए नहीं, बल्कि एक तीव्र प्रभाव डालते हुए इन परिस्थितियों के खिलाफ संघर्ष करने की प्रेरणा देते हैं। इस संग्रह में पाश की अनेक चर्चित व महत्वपूर्ण कविताएं संकलित हैं। ऐसे ही कुछ कविताएं हैं, हम लड़ेंगे साथी, तूफान कभी मत मात नहीं खाते, पुलिस के सिपाही से कांटे का जख्म व कुछ गीत। हम लड़ेंगे साथी पाश की बहुचर्चित कविता है, जो उनके भाषाओं में अनुदित अनेक भाषाओं में अनुदित हुई है। इसी कविता से प्रेरित होकर उनकी शहादत के बाद छपे उनके कविता संग्रह का शीर्षक ही लड़ांगे साथी रखा गया है। पाश की कविता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि उसमें एक अभूतपूर्व आशावादी संदेश है। खराब से खराब परिस्थितियों में भी पाश में जीवन की विजय के प्रति अद्भुत विश्वास है। यही आशावाद उन्हें गोर्की और आस्त्रोवस्की की बहुत करीब ले जाता है और आस्त्रोवस्की की रचना जय जीवन बरबसी पाश की कविताओं को पढ़ते हुए ध्यान में आने लगती है। हम लड़ेंगे साथी कविता में पाश हर स्थिति में तब तक संघर्ष करने का प्रण लेते हैं जब तक दुनिया में लड़ने की जरूरत बाकी है। अनथक संघर्ष करने की प्रेरणा देने वाली यह कविता विश्व की बेहतरीन कविताओं में जानी जाएगी। जन्मदिन कविता इस संग्रह की आत्म साक्षात्कार की कविता है। इसमें पास जेल में अपने कैदी साथियों के साथ बीड़ियां खनखना कर जन्मदिन मुबारक गीत के साथ जीवन की 21वीं वर्षगांठ मनाते हैं और अपने नए जन्म की घोषणा करते हैं। सामाजिक क्रांति की चेतना से लैस एक नया जन्म, जेल जीवन के दौरान लिखी कविता की अनेक कविताएं इस संग्रह में ही संकलित हैं। मुझे चाहिए कुछ बोल जिनसे गीत बन सके, कविता द्वारा पाश व्यवस्था के खोखलेपन पर पुनः तीव्र व्यंग करते हैं। यह ऐसी अमानवीय व्यवस्था है जिसमें किसी सृजनात्मक व्यक्तित्व के लिए सृजन की कोई संभावना नहीं, जब तक कि वह स्वयं को इस व्यवस्था को बदलने के संघर्ष न जोड़े। उड्डते माजा मगर संग्रह में पाश के दो अत्यंत लोकप्रिय गीत भी संकलित हैं जो मंच पर खूब गाए गए हैं। इनमें एक गीत मजदूर की झोपड़ी को मीनार बनने का संदेश देता है और दूसरा सुनहरी प्रभात के संभावित आगमन की खुशी में आकाश और धरती के नाचने गाने की अभिव्यक्ति करता है। तूफान कभी मात नहीं खाते शीर्षक कविता इस संग्रह की अन्य महत्वपूर्ण कविता है, जिसमें क्रांतिकारी शक्तियों की अस्थायी असफलता पर व्यवस्था को उछलने की चुनौती देते हुए कहा कि हवा फिर दिशा बदलेगी और तूफान कभी मात नहीं खाएंगे। पुलिस के सिपाही से कविता में फिर वर्ग चेतना का उद्घोष है। पुलिस के सिपाही को किसान मजदूर का बेटा समझकर पाश ने उसे अपना वर्ग पहचानने और उनके लिए बंदूक उठाने का संदेश दिया है। सेंसर होने का खत का दुखांत में जहालत से भरे पुलिस अधिकारियों पर फिर व्यंग है जो व्यक्तिगत पत्रों में भी अर्थ के अनर्थ करते हैं। कांटे का जख्म कविता में गांव के साधारण आदमी की जीवन की दुखांत गाथा है, तो जहां कविता खत्म होती है गांव के अनपढ़ लड़कों को संबोधित है जिसमें वहां से जिंदगी शुरू करने का संदेश है जहां कविता खत्म होती है। वास्तव में उड्डे दे बाजा मगर की 38 कविताओं ने पाश को पंजाबी कविता के इस दौर में सबसे महत्वपूर्ण कवि के रूप में स्थापित किया है और उसका यह दर्जा अभी तक कोई और पंजाबी कवि पार नहीं कर पाया है, न केवल पंजाबी में बल्कि अखिल भारतीय स्तर पर भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण कवि के रूप में पाश को पहचाना जाने लगा था। हालांकि उनकी कुछ ही कविताएं अनुदित होकर देश के अन्य हिस्सों तक पहुंची थी। पाश का तीसरा कविता संग्रह साढ़े समया बिच समकालीन जीवन का काव्यात्मक किंतु यथार्थ आकलन तो है ही, पाश की कला के भी और अधिक विकास का सूचक है। 1978 में प्रकाशित इस संग्रह में उनकी अपेक्षाकृत लंबी 38 कविताएं संकलित हैं। संग्रह की अंतिम कविता कामरेड से बातचीत 6 खंडों में लिखी पाश की अब तक प्रकाशित सबसे लंबी कविता है। मुक्तबोध की तरह पाश की काव्य संवेदना भी अब लंबी कविताओं के रूप में अभिव्यक्ति पाने की ओर बढ़ रही थी, लेकिन आतंकवादी हाथों ने अल्पाय में पाश की हत्या करके पंजाबी साहित्य संस्कृति के संभावित मुक्तिबोध को छीन लिया। इस हत्या ने एक बार फिर यह प्रमाणित कर दिया कि फासिस्ट विचारधारा और इसे मानने वाले ही साहित्य संस्कृति के सबसे बड़े शत्रु हैं। साढ़े सबका विश्व की भूमिका में पाश ने कविता में संबोधन शैली की प्रशंसा करते हुए कालिदास के प्रभाव को स्वीकार किया, जिस इसके साथ ही कमलादास नेरुदा व नाजिम हिकमत का प्रभाव भी उन्होंने स्वीकार किया है। उड़दे बाजा मगर की अंतिम कविता अपने गांव के अनपढ़ लड़कों से संबोधित थी, जहां कविता खत्म होती है, और साढ़े समया विच की पहली कविता फिर गांव के लड़कों से संबोधित है जहां कविता खत्म नहीं होती। इस कविता में मनुष्य की सामाजिक चेतना के विकास के साथ साथ उसके भीतर पैदा होती दुखों की अनुभूति की चर्चा है। 15वें के बाद हर वर्ष शमशान से उठती भाव का गुब्बार होता है। कवि महसूस करता है, मैं जो सिर्फ एक आदमी बनना चाहता था यह क्या बना दिया गया हूं। लेकिन संग्रह की भूमिका स्वरूप लिखी कविता इनकार में पाश की स्पष्ट उद्घोषणा है कि वे अपने वर्ग से जुड़े हैं और जुड़े रहेंगे और व्यवस्था के किसी भी संदर्भबोध को स्वीकार नहीं करेंगे। मैं अब विदा लेता हूँ नामक कविता पाश की संभवतः तीव्रतम कोमल संवेदना कविता है, जिसमें अपनी मृत्यु से 10 वर्ष पहले उन्होंने अपनी सामाजिक भूमिका स्पष्ट करते हुए अपनी अंतिम परिणति स्पष्ट कर दी थी, लेकिन साथ ही यह भी कि उनमें जीवन की कैसी उत्कट लालसा थी। न केवल स्वयं जीने की उत्कट लालसा बल्कि वे अपने वर्ग के लिए अपने मित्रों के लिए भी ऐसे ही उत्कट जीवन लालसा की कामना करते थे। कविता की अंतिम पंक्तियां पूरी शिद्दत के साथ इस भावना को व्यक्त करती हैं। तुम यह सभी कुछ भूल जाना मेरी दोस्त, सिवाय इसके कि मुझे जीने की बहुत लालसा थी कि मैं गले तक जिंदगी में डूबना चाहता था। मेरे भी हिस्से का जी लेना मेरी दोस्त, मेरे भी हिस्से का जी लेना। सच्चे क्रांतिकारियों में ही ऐसी जीवन कामना होती है और वही अपना जीवन दूसरों को जीने के लिए छोड़ जाते हैं। पाश की यह कामना उनके साथियों प्रकाशकों को उन्हीं की तरह जीकर पूरी करनी है। प्रतिबद्धता कविता में जिंदगी और समाजवाद के प्रति सच्ची प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं और झूठ मूठ के दिखावे का विरोध। तुम्हें पता नहीं, कविता में वे अपने कवि बिंब का जिक्र करते हुए कहते हैं कि जिन्हें कविता में किसी मुजरे में घुसे आवारा कुत्ते की तरह समझा जाता है। युद्ध और शांति इस संग्रह की एक अत्यंत महत्वपूर्ण दार्शनिक कविता है। इस कविता में पाश, युद्ध और शांति के प्रश्न पर काव्यात्मक ढंग से विचार करते हुए यह स्थापित करते हैं कि वास्तव में युद्ध यानी संघर्ष जीवन की वास्तविकता है और शांति एक तरह से जीवन से पलायन है। शांति के वे कई ऐसे बिंब सृजित करते हैं जो बिल्कुल नए व कुछ हद तक चौंकाने वाले भी हैं, और युद्ध के भी ऐसे भाव भी ने बिंब सृजित करते हैं कि हम जीवन संघर्ष में कूदने की प्रेरणा ग्रहण करने लगते हैं। युद्ध और शांति उनकी क्लासिक रचना बनने की क्षमता रखती है। हमारे समयों में कविता भी संग्रह की महत्वपूर्ण कविता है, जिसमें कवि ने समकालीन समाज की राजनीतिक स्थिति का दुख भरा काव्यात्मक चित्रण किया है। कम्युनिस्ट पार्टियों का क्रांति पथ छोड़कर संसद में जा भटकना इन शब्दों में व्यक्त हुआ है। यह शर्मनाक हादसा हमारे साथ होना था कि दुनिया के सबसे पवित्र शब्दों ने बन जाना था सिंहासन की खड़ाऊं। मार्क्स का सिंह जैसा सिर दिल्ली की भूलभुलैया में निमियाता फिरता, हमें ही देखना था मेरे यारों, यह कुफ्र हमारे इस समय में होना था। कामरेड से बातचीत उक्त संग्रह की सबसे लंबी व अंतिम कविता है, जिसमें उन्होंने कामरेड से संबोधित करते हुए कम्युनिस्ट के आंदोलन के सबल व निर्बल दोनों ही पक्षों की चर्चा की है। कम्युनिस्ट आंदोलन व क्रांति के प्रति कवि की सच्ची भावना व चिंता इस कविता के हर शब्द से झलकती है। पाश की कविता का अब तक का अंतिम संग्रह लड़ांगे साथी पाश की शहादत के एक महीना बाद प्रकाशित हुआ था। इस संग्रह में पिछले तीन संग्रहों से चुनी कविताओं के साथ साथ 23 कविताएं थीं जो उस समय या तो अप्रकाशित थी या केवल पत्र पत्रिकाओं में ही प्रकाशित हुई थी। इन कविताओं में उनकी चार कविताएं पंजाबी की मौजूदा स्थिति का सबसे सशक्त काव्यात्मक दस्तावेज हैं। ये कविताएं हैं धर्म दीक्षा के लिए विनय पत्र, कुएं बेदखली के लिए विनय पत्र तथा सबसे खतरनाक। धर्म दीक्षा के लिए विनय पत्र कविता में पाश ने भिंडरावाले की फासिस्ट विचारधारा पर आधारित खालिस्तानी आंदोलन के अमानवीय पक्ष को एक माँ के गुहार के माध्यम से उभारा है। धर्मगुरु से माँ अपने बेटे की दीक्षा व रक्षा करती है, क्योंकि आदमी बेचारा सर पर रहा नहीं, क्योंकि धर्मगुरु के हुंकार ने अच्छे खासे परिवार को बाड़े में बदल दिया। एक तीव्र तिलमिला देने वाले व्यंग के माध्यम से पाश ने भिंडरा वाले विचारधारा व आंदोलन की वास्तविकता इस कविता में उघाड़ी है, और यह कविता तथाकथित खालिस्तान समर्थक आतंकवादियों की आंखों में कांटे की तरह चुभती भी रही। 1982 में पाश ने हाक हस्तलिखित पत्रिका में कुएं नामक कविता प्रस्तुत की। इस कविता के अपेक्षाकृत अमूर्त बिंबों के दौरान उन्होंने खालिस्तानी आंदोलन के प्रतिक्रियावादी पक्ष को उभारा, लेकिन साथ ही साथ नवंबर 84 के सिख विरोधी दंगे से उपजे सात्विक क्रोध में पाश ने बेदखली के लिए विनय पत्र जैसी सशक्त मानवीय रचना भी की, जिसमें सत्ता द्वारा निर्दोष सिखों की हत्या को उघाड़ते हुए खानदानी भारत से अपना नाता तोड़ने की काव्यात्मक घोषणा की गई। पाश की अंतिम प्रकाशित कविता थी सबसे खतरनाक। इस कविता में पाश ने शोषण दमन अत्याचार से भी खतरनाक माना है इंसान के प्रतिरोध करने जीने और उसके सपने के मर जाने की स्थिति को। आकस्मिक नहीं कि पाश ने अपने बलिदान द्वारा इस सबसे खतरनाक स्थिति को भेद दिया। संभवतः पाश की कुछ अप्रकाशित कविताएं अभी इधर उधर बिखरी हुई हों, लेकिन अब तक प्रकाशित कविताओं से ही उनका कवि बिंब पूरी तरह स्पष्ट है। अपनी काव्य यात्रा के अंतिम दौर में पाश ने संबोधन शैली को अधिक अपनाया और इस शैली में अनेक सशक्त रचनाएं की हैं। 23 मार्च 1988 को पाश भी अपने प्रिय शहीद भगत सिंह के रास्ते पर चले गए, और उक्त ऐतिहासिक तारीख को उन्होंने राजनीति व संस्कृति के संगम का दर्जा भी दिला दिया। भगत सिंह 23 मार्च 1931 को देश के स्वतंत्रता आंदोलन की बलिवेदी पर शहीद हुए थे। भगत सिंह मूलतः एक राजनीतिक कार्यकर्ता थे, यद्यपि उनकी साहित्यिक समझ अत्यधिक साफ थी। पाश मूलतः एक सांस्कृतिक कार्यकर्ता थे, एक कवि थे, लेकिन उनकी राजनीतिक समझ बहुत साफ थी। भगत सिंह और पाश की एक ही दिन से जुड़ी शहादत उन्हें पंजाब की परंपरा में एक साथ ले आई। यद्यपि दोनों की शहादत में 57 वर्ष का अंतर है, लेकिन दोनों ही मानवतावादी व क्रांतिकारी विचारों के लिए शहीद हुए। पाश की शहादत ने यह सिद्ध कर दिया है कि मानव मूल्यों के व्यापक संघर्ष में संस्कृति कर्मी भी वैसे ही योद्धा हैं जैसे राजनीतिक कार्यकर्ता। राजनीति व संस्कृति को मानव मूल्यों के संघर्ष में अलगाया नहीं जा सकता। 23 मार्च के दिन शहीद भगत सिंह और पाश को एक साथ याद करते हुए यही संदेश हमारे सामने बार बार आएगा। चमन लाल।